दूरी का एहसास। अब कहीं ना कहीं अरमान परेशान होकर यही सोच रहा था कि अब तक न जाने किस किस को उसके नशे में होने बारे में क्या क्या पता होगा, तो इसलिए उसे वहां थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। अब आगे आस्था ने अरमान को एक नज़र देखकर फिर ध्रुव को देखा। कल रात की घटना के बारे में सोचकर उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था, लेकिन वो सबके सामने खुद को कंफर्टेबल रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। आकाश ने रश्मि को, सुमित ने राधिका को और ध्रुव ने वंशिका को अपने ठीक बराबर में बैठाया था और वो सब हंसी खुशी अपनी अपनी बीवी को अपने हाथों से नाश्ता करवा रहे थे। फिलहाल आस्था बेबस नजरों से सबको देख रही थी क्योंकि अरमान ने उसकी प्लेट में कुछ भी खाने के लिए नहीं रखा था। अचानक उसके दिल और दिमाग पर उदासी छा गई। अरमान ने भी उसकी मायूसी भांप ली थी, लेकिन उसने आस्था को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। ठीक उसी वक्त अबीर सिंह राठौर, जिसे आकाश ने कॉल करके नाश्ते पर बुलाया था, वो तुरंत वहां आ गया था। अबीर को वहां देखकर सभी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट उभर आई थी। अबीर को अपने घर में देख के अरमान के चेहरे पर 12 बज गए थे। उसने नाखुश होते हुए अपना मुंह बनाया। वहीं अबीर सीधा आस्था के बराबर में बैठ गया था। उसकी खाली प्लेट को देखकर वो एकदम से बोला, ये क्या बटरफ्लाई, तुमने अभी तक नाश्ता करना शुरू नहीं किया? ओ, तो तुम मेरा इंतजार कर रही थी, सो स्वीट बटरफ्लाई, तुम कितनी प्यारी हो। ये बोलकर अबीर ने देर ना करते हुए अपने हाथों से आस्था को नाश्ता सर्व करना शुरू कर दिया था। उस समय अरमान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर ही अंदर उसके दिल को कुछ कचोटे जा रहा था, क्योंकि वो चाहकर भी अबीर आस्था को अलग नहीं कर पा रहा था। वहीं आस्था ने एक पल के लिए अबीर की ओर आश्चर्य से देखा और अगले ही पल उसने अरमान की ओर एक नजर डाली। उसके गुस्से से लाल चेहरे को देखकर आस्था का चेहरा हल्का सा बदला और वो एकदम से सोचने लगी, अरे वाह मिस्टर खड़ू सिंघानिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, आप अबीर को मेरे साथ देखते ही इतने ज्यादा जेलस हो जाओगे। अभी तो सिर्फ खेल की शुरुआत हुई है मिस्टर अरमान सिंघानिया, अभी आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। इतना सोचकर आस्था ने अबीर की ओर नजरें घुमाई और हल्की सी स्माइल के साथ बोली, अच्छा मिस्टर राठौर, आपने आज लंच के लिए पूछा था ना, तो क्यों ना हम आज दोपहर में लंच करने चलें। वहीं उस वक्त नानी माँ, अभिमान की और दादाजी तीनों ही अंश को लेकर हॉल में बैठे हुए थे। वो लोग उन सबके साथ मौजूद नहीं थे क्योंकि नानी माँ को थोड़ा जल्दी उठकर ही नाश्ता करने की आदत थी और अपने साथ साथ उन्होंने अभिमान जी और दादाजी को भी आदत डाल दी थी, इसीलिए नानी माँ और वो लोग पहले ही नाश्ता कर चुके थे और बाकी बच्चे जो लेट उठते थे उनका नाश्ता थोड़ी देर से बनता था, इसीलिए वो तीनों मिलकर अब अंश को लेकर हॉल में बैठे हुए थे। फिलहाल आहान अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं रौनक को नाश्ता देकर आता हूँ। लेकिन आस्था उसे रोकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं भैया, उसने ऑलरेडी नाश्ता कर लिया है, आप अपना नाश्ता कर लीजिए। इस पर आहान का चेहरा हल्का सा बदला और वो एकदम से बोला, लेकिन भाभी मैं तो उससे ठीक से मिला भी नहीं हूँ, मैं उससे मिलकर आता हूँ। तब रश्मि हल्की नाराजगी से बोली, आहान तुम्हें हो क्या क्या है, तुम काफी बदले बदले से लग रहे हो, मैंने तुमसे कल भी पूछा था लेकिन तुमने कल भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया, क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। अब जैसे ही अरमान और बाकी सबने रश्मि के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो अगले ही पल सबकी नजरें आहान पर जाकर ठहर गई थी। वहीं राधिका भी कुछ सोचते हुए बोली, हाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है, आहान काफी चुलबुला था लेकिन अचानक से वो एकदम शांत सा हो गया है, ये बात मुझे भी हैरान कर रही है। लेकिन ध्रुव तुरंत ही इस बात को हंसी में टालते हुए बोला, रश्मि भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप तो जानती हैं इस नालायक को, जरूर कुछ ना कुछ उटपटांग बातें सोच रहा होगा इसीलिए ऐसी हरकत कर रहा है, आप फिक्र मत करिए ये अपने आप ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि जिस तरह से अरमान का एंटीडोट चोरी हो गया, अबीर सिंह राठौर बैंकरप्ट हो गया, तो इसका मतलब साफ है कि उनका अगला निशाना ये लोग भी हो सकते हैं। सबको लग रहा था कि शायद इसी वजह से आहान को किसी अनहोनी को लेकर डर लग रहा होगा, इसीलिए शायद वो थोड़ा बुझा बुझा सा है। फिलहाल किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था कि आखिरकार आहान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं डाइनिंग टेबल पर अब आस्था के अबीर के साथ डिनर पर जाने वाली बात सोचकर अरमान के माथे पर पूरी तरह से बल पड़ गया। वो आस्था को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, ओ हेल, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ ऑफिस चलना है और तुम्हें मेरे बेटे की देखभाल भी करनी है। अब जैसे ही आस्था ने अरमान के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो आस्था चौंक कर बोली, लेकिन मिस्टर सिंघानिया मुझे नहीं लगता कि मेरा ऑफिस आना ठीक रहेगा, और वैसे भी आपकी तो आज बैक टू बैक काफी सारी मीटिंग है, तो फिर मेरा इस तरह से ऑफिस में आना क्या ठीक रहेगा। अब जैसे ही आस्था ने ये शब्द कहे तो वैसे ही अरमान को उसकी बात सुनकर झुंझलाहट हुई,
अगले ही पल वो आस्था को घूरते हुए मन ही मन चिढ़कर सोचने लगा, जरूर ये इसलिए ऑफिस नहीं आना चाहती क्योंकि इसे अबीर सिंह राठौड़ के साथ टाइम बिताना है। वही अबीर को अचानक मजाक सूझा, फिर वो अरमान को देखकर शरारत से बोला, अरमान ब्रो क्या हो गया तुम्हें, और डोंट वरी, वैसे भी मैं जानता हूँ तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है और उसे देखकर अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तो मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं तुम्हारी बीवी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दूंगा। ये बोलकर अबीर अरमान की ओर देखकर आंख मार देता है। अबीर के कहे शब्दों को सुनकर अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, और वैसे भी वो आस्था को आज बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने आस्था को आज अकेला छोड़ा तो वो कल रात की बात किसी न किसी को जरूर बता देगी। आस्था को वैसे ही चटर पटर बोलने की आदत थी, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसने आस्था को देखते हुए दबंग और खतरनाक आवाज में कहा, मैं अपना बेटा अपने साथ ऑफिस लेकर जा रहा हूँ, तो तुम भी उसे संभालने के लिए मेरे साथ चलोगी। अरमान की दबंग आवाज सुनकर आस्था के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ठीक उसी वक्त नानी माँ, जो रौनक के लिए एक बार फिर से कुछ दवाइयां वगैरह लेकर वहां जा रही थी, उन्होंने अरमान की बात सुन ली और वो अरमान के पास आई और उसकी ओर देखकर चंचलता से बोली, अरमान बिटवा मेरी ध्यान से बात सुनो, अंश अभी बहुत छोटा बच्चा है और अगर तुम उसे रोज इस तरह से ऑफिस लेकर जाओगे तो इससे उसकी तबीयत खराब हो सकती है और उसके विकास में बाधा पड़ सकती है। बच्चों को खेलने के लिए काफी स्पेस चाहिए होता है और साथ साथ ऑफिस में वो सिर्फ तुम्हें ही देखेगा या फिर आस्था को देखेगा, लेकिन उसके बाद क्या, इस तरह से उसकी जिंदगी तुम दोनों में ही सीमित होकर रह जाएगी। बेटा हम जानते हैं कि तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं तुम अंश को घर पर ही छोड़कर जाओ, उसे अपने साथ लेकर मत जाओ, इससे बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है, उसे परेशानी हो सकती है। जैसे ही ये शब्द नानी माँ के मुंह से निकले, अरमान ने अपनी आईब्रो ऊंची की, जिसे देखते ही नानी माँ के दिल में डर की एक लहर दौड़ पड़ी और नानी माँ ने तुरंत फिर मदद की गुहार लगाते हुए इधर उधर देखा और वो परेशान होकर सोचने लगी, ये दामाद जी तो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हमने उनके अंश को ही अगवा कर लिया हो और उनको ना देने की बात करती हो, ये खामखा हम पर इतना क्यों गुस्सा हो रहे हैं।
फिर नानी माँ जल्दी से बात बदलते हुए हकलाकर बोली, बेटा हमने तो बस सिर्फ तुम्हें आइडिया दिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम हमारी बात मानो या ना मानो। आहान ने नानी माँ की सिचुएशन देखी और फिर वो उनकी साइड लेते हुए बोला, हाँ भैया नानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको चैम को इस तरह से ऑफिस लेकर नहीं जाना चाहिए और वैसे भी मैं घर पर अंश का ध्यान रख लूंगा। ये कहते हुए आहान की आवाज में सीरियसनेस साफ छलक रही थी। अब जैसे ही आहान ने गंभीरता से ये शब्द कहे तो वैसे ही ध्रुव, सुमित और आकाश, जो कि शांति से उनकी सारी बातें सुन रहे थे, अचानक उनकी आंखें हैरानी से भर गई थीं और वो अविश्वास भरी नजरों से कंधे उचकाते हुए एक दूसरे को देखने लगे, मानो जैसे उन्होंने आहान के मुंह से कुछ अनोखी बात सुन ली हो। फिलहाल अरमान ने सबको इग्नोर कर दिया और बिना कुछ कहे वहां से उठकर बाहर जाने लगा। पता नहीं क्यों पर आहान सबको बड़ा ही मैच्योर सा लग रहा था। वहीं आस्था भी आहान को नोटिस कर रही थी। आहान आज कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहा था, लेकिन उसने उससे कुछ कहा नहीं। लेकिन तभी अबीर एकदम से बोला, अब तो बच्चे संभालने की भी समस्या खत्म हो गई है, अब तो हम अपने लंच डेट पर जा ही सकते हैं। अब जैसे ही अबीर ने एक बार फिर आस्था की ओर देखकर मुस्कुराते हुए ये सवाल किया तो अरमान, जो कि बाहर जा रहा था, अचानक उसके कान खड़े हो गए। उसकी आंखों में अचानक एक रूखापन सा आ गया और वो तुरंत ही आस्था को घूरते हुए अबीर को देखकर एटीट्यूड से बोला, बिल्कुल नहीं, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, और वैसे भी इस लड़की का नाम सिंघानिया परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और ये अब अरमान सिंघानिया की बीवी है, तो तुम्हें इसे कहीं पर भी इस तरह से लेकर जाने की इजाज़त नहीं है और मैं इस लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए ये मेरे साथ मेरे ऑफिस ही जाएगी। ये बोलकर अरमान आगे आया, उसका चेहरा एकदम ठंडा हो गया और वो आस्था को चेतावनी भरी नज़रों से देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा कार में इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। अरमान आस्था को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कच्चा ही चबा जाएगा। आस्था ने अरमान की आवाज़ में छुपी हुई नाराज़गी भांप ली और वो मन ही मन मुस्कुराई। अचानक उसने ऐसे दिखावा किया मानो जैसे उसे अरमान की बातों का बहुत बुरा लगा हो। आस्था के हाव भाव बदलते हुए देख अरमान तंग आकर वो चिढ़कर सोचने लगा, मैंने उस अबीर सिंह राठौर के साथ लंच डेट पर जाने से मना क्या कर दिया, तो ये सुनकर जैसे इसके ऊपर कोई बिजली गिर गई। आखिर इस लड़की ने लंच डेट पर जाने के बारे में सोच भी कैसे लिया। मैं भी देखता हूँ अरमान सिंघानिया के रहते हुए तुम किस तरह से लंच डेट पर जाती हो। ये सोचते हुए अरमान गुस्से से तेज कदमों के साथ वहां से निकल गया। वहीं सभी लोग, जो अरमान के बर्ताव पर अब तक हंसी दबाए बैठे हुए थे, अब उसके जाने के बाद खिलखिलाकर हंस रहे थे। ध्रुव, सुमित और आकाश, आहान ने अपने इमोशन ज्यादा नहीं दिखाए थे। फिलहाल वो लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से राजवीर के बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते थे। वहीं आस्था अबीर को देखते हुए फट से बोली, क्या एक्टिंग की आपने, सच में फैब्युलस। ये कहते हुए उसने अबीर को हाईफाई दिया। इस पर अबीर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे बटरफ्लाई, इसका इनाम तो आपको हमें जरूर देना चाहिए, एक कप कॉफी के रूप में। अब जैसे ही अबीर ने ये कहा तो वैसे ही आस्था हल्का शर्मासा गई और वो एकदम से बोली, क्या अबीर जी आप भी ना।
फिलहाल वो उठी और अंश को नानी को देते हुए बोली, हम चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खड़ूस पति फिर से यहाँ ना आ जाए और एक बार फिर कहने लगे, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें इस मेंशन से बाहर फेंक दूंगा। ये बोलकर आस्था अब जल्दी से अरमान के पीछे पीछे जाने लगती है, क्योंकि वो जानती थी कि नानी माँ अंश का बहुत अच्छे से, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा अच्छा ख्याल रख सकती हैं। और वैसे भी अंश को अब पूरे परिवार की आदत लग चुकी थी, वो किसी के भी पास आसानी रह लिया करता था। फिलहाल आस्था चुपचाप जाकर अरमान के साथ उसकी कार में बैठ गई थी। वहीं दूसरी ओर अब नानी माँ ने जाकर रौनक को कुछ टैबलेट दी और कोमलता से बोली, बेटा अब तुम फटाफट से कुछ खाकर पीकर ये ताकत की दवाई लो, और हाँ, हर एक घंटे के अंदर तुम्हें कुछ न कुछ खाते रहना है। जितना तुम खाना खाओगी उतना ही तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा होगा। इस वक्त तुम्हारे शरीर को ताकत की जरूरत है। इस तरह से नानी माँ ने मारिया और रौनक को जल्दी कुछ न कुछ एक बार फिर से खिलाना शुरू कर दिया था। वहीं उस समय रौनक का मन पूरी तरह से बेचैन था, लेकिन फिर भी वो नानी माँ का दिल रखने के लिए बेमन से खाना खाने लगी थी।